तो ये सभी लेबर के बारे में था, और फिर सिक्स जो है पार्टिसिपेशन ऑफ दी फादर एंड रिलेटिव है ना, खास करके जो सासू माँ है या फिर फादर इन लॉ है, दादा दादी नाना नानी, तो इन सभी का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली है तो ये सभी नहीं रहेंगे, हस्बैंड ही रहेंगे, तो ज्यादातर यहाँ पे फादर के लिए ही लिखा है। कि पहले हम लोगों का क्या कंसेप्ट रहता था, 7 मंथ्स तक यहाँ पे तो फादर का रोल क्या था, टू बी फादर, की उसको 7 मंथ्स में मैके छोड़ आना बस, फिर डिलीवरी का न्यूज आएगा फिर जाके देखना। लेकिन अभी स्लोली थैंक्स की सभी के रोल्स चेंज हो रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि हम लोग देखते हैं ओपीडी में भी हस्बैंड एकम्पनी करते हैं, तो प्रेगनेंसी के बारे में भी पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन अभी हमें और एक स्टेप आगे बढ़ना है ना, ये डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम है, तो आपको क्या करना है, उनका साथ डाइट एक्सरसाइज और मेडिटेशन में देना है। क्या वो ठीक से डाइट खा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्या आपके लिए वेट नहीं कर रहे हैं 11 बजे तक 12 बजे तक, है ना, तो ये नहीं करना है। जो रिकमेंडेशन है उसको क्या वो फॉलो कर रही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन में उनका साथ दो, तो ये रहेगा एक डिवाइन गर्भ संस्कार बैच अटेंड किए हुए फादर का रोल। और फिर बर्थ पार्टनर, एक तो हम लाइफ पार्टनर तो बन गए, लेकिन हमें बर्थ पार्टनर भी बनना है थ्रू आउट जर्नी, है ना, प्रेगनेंसी और लेबर हमें साथ देना है। लेकिन यदि वो ऐसे थोड़ा सा घबराने वाले हैं तो उनको बर्थ पार्टनर नहीं बनाओ, जो ऐसे थोड़ा स्ट्रांग विल वाले रहेंगे उनको बर्थ पार्टनर बनाओ, नहीं तो आपका पेन देख के वो ही बाहर भाग जाएंगे। तो एक बर्थ पार्टनर आप सिलेक्ट करना। तो ये था पार्टिसिपेशन ऑफ दी फादर, और उनका रोल पोस्ट डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पोस्ट डिलीवरी क्या रहता है, उनको पता ही नहीं रहता है बेबी को कैसे हैंडल करना है, तो एक ऐसे डॉल खरीद लो और बेबी को कैसे हैंडल करना है वो भी सीखना है। और फिर हॉस्पिटल में इतने सारे रिलेटिव्स मिलने आते हैं, फ्रेंड्स मिलने आते हैं, तो आपका रोल ये रहता है बेबी को देखा बाहर से, हाथ पे भी नहीं लेना है उसको, देखा और बाहर तो लेके जाओ, फिर वो लोग भी वहीं बैठ जाते हैं, वो हम भी उनके साथ बैठ जाते हैं, फिर उसको माँ को स्टिचेस में दर्द हो रहा है, फीडिंग करना है, कुछ सोचते नहीं है। तो ये सभी फादर्स का रोल है, जो कोई आएगा उसको मिला के उनके साथ बाहर प्यार से उनको लेके जाइए और गप्पे बाहर लगाइए, तो एक भी पोस्ट डिलीवरी रोल रहता है। और फिर पोस्ट डिलीवरी केयर में भी आपका रोल रहता है, क्योंकि मदर को थोड़ा सा सभी ये बेयर किया है, स्टिचेस रहते हैं, तो बेबी को लेना है, बेबी को फीडिंग करना है, बेबी को मसाज करना है, ये सभी फादर्स ने सीख लेना चाहिए। तो क्या क्या है पोस्ट डिलीवरी केयर फॉर बेबी एंड मदर, केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, ब्रेस्ट फीडिंग, वैक्सीनेशन, साइंटिफिक मसाज, एंड मदर के लिए डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे हमने पहले भी देखा, विद इन हाफ एन आवर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से प्रोग्रामिंग कर दो कि हाफ एन आवर में मुझे फीडिंग करना ही है। सिजेरियन भी यदि सपोज अनफॉर्चुनेटली होता है किसी वजह से, तो भी आपका स्पाइनल में होता है, यदि आपको पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है ना तो ही थोड़ा लेट फीडिंग होता है, अदरवाइज जैसे ही आप बाहर आते हैं विद इन 1 आवर, क्योंकि 45 1 आवर में आपका सिजेरियन तो हो जाता है, तो इमीडिएट फीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। जो थिक फ्लूइड आता है, फर्स्ट 2-3 डेज ज्यादा मिल्क नहीं आएगा, लेकिन जो थिक फ्लूइड आता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज रहते हैं, जैसे इट इज दी कवच कुंडल फॉर दी बेबीज, है ना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट गार्ड रहता है, तो वो बेबी के लिए जाना बहुत जरूरी है। और आप सभी को एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, 7 मंथ्स में आपका ब्रेस्ट निप्पल आप खुद चेक कर लेना या फिर डॉक्टर से चेक करा लेना, क्योंकि हम लोग देखते हैं बाद में फिर पोस्ट डिलीवरी फ्लैट निप्पल्स है, रिट्रैक्टेड निप्पल्स है, और तभी आप फीडिंग नहीं कर सकते, तभी हमारे पास कुछ करने के लिए रहता ही नहीं है। 7 मंथ से 9 मंथ तक 2 मंथ तक पीरियड रहता है, तो खुद का खुद आप देख लेना, यदि कुछ डाउट्स है तो डॉक्टर से क्लियर कर लेना, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी। आप बाकी बाद में कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, और आफ्टर सिजेरियन भी इमीडिएटली हम कर सकते हैं। दूसरा जो है, और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जैसे बेबी को ऐसे खड़ा रखना है, डकार निकालना है, नहीं तो फिर उसको वॉमिटिंग होता है। दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड केयर है ना, क्या होता है कि मसाज किया जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी ऑयल जाता है, फिर वो ड्राई नहीं होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऑयल मसाज इज साइंटिफिकली अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड। ओनली थिंग वो टेस्टिंग करना चाहिए कि कौन सा ऑयल हम यूज कर रहे हैं, बेबी को टॉलरेट हो रहा है या नहीं, कभी कभी उससे एलर्जी हो जाता है। और सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑयल मसाज का था कि बेबी के साथ हमारा कम्युनिकेशन डेवलप करना है, लेकिन फिर मसाज के लिए हम क्या करते हैं, किसी आया या किसी को अपॉइंट कर देते हैं, फिर हम लोग उनका क्लीनलीनेस भी नहीं देखते, वो आते हैं कौन से गंदे हाथ से पैर पे रखते हैं और उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए पीडियाट्रिशियन आपको रिकमेंड करेंगे मसाज करना ही नहीं है। यदि घर में से कोई करता है ना, जैसे फादर मदर या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यदि बेबी को जो ऑयल थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, जो ऑयल सूट हो रहा है वो ऑयल, लेकिन वो तभी ध्यान देना है कि ईयर में, कान में, नाक में, नाभि में और मोशन की जगह ऑयल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से इन्फेक्शन होते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अम्बिलिकल कॉर्ड केयर। फिर जॉन्डिस, इसके लिए बता रहे हैं कि अभी जैसे मौसम हमारा चालू है बारिश का, सनरेज बहुत कम रहते हैं, जो बेबीज है उनका लीवर मैच्योर नहीं रहता है, पोस्ट डिलीवरी लीवर मैच्योर नहीं रहेगा तो बिल्यूरिबिन लेवल जो है थोड़ा बढ़ेगा और सभी बेबीज को जॉन्डिस होने वाला है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, उसमें अबनॉर्मल कुछ नहीं, लेकिन यदि सनलाइट नहीं है तो वो नेचुरली कम नहीं होगा, और फिर ऐसे थोड़ा येलो बेबी है, लेवल्स 15 के ऊपर है, तो ये बेबीज को एनआईसीयू में एडमिट किया जाता है, जिसको फोटोथेरेपी दिया जाता है। जो सनरेज है वैसे ही ट्यूबलाइट्स बनाए हुए रहते, लेकिन जैसे ही हम बताते हैं कि बेबी को जॉन्डिस हुआ है, अभी एनआईसीयू में शिफ्ट करना है, बस एनआईसीयू वर्ड सुना और यहाँ पे गंगा जमुना सब चालू होते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। यदि लेवल बढ़ जाता है तो इट इज पैथोलॉजिकल और फिर ब्रेन के लिए डैमेजिंग होता है। तो बेबी एनआईसीयू में उसके लिए शिफ्ट किया जाएगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट। यदि हम बेबी के प्रति हम बहुत प्यार है, केयरिंग है, तो यदि हम रोते हैं ना, तो इट्स अ निगेटिव एनर्जी, हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि हम निगेटिव एनर्जी बेबी को दे रहे, हमको तो बेबी को पॉजिटिव एनर्जी देनी है ना, उसको रिकवर जल्दी होना है। तो जो हम कर रहे हैं हमें सोचना है, हमको क्या लगता है हमारे बच्चे को थोड़ा लगा तो हमने रोने, हमारा वी आर वेरी मच कनेक्टेड यू नो, बट देन अल्टीमेटली एक्चुअली यू आर सेंडिंग अ निगेटिव एनर्जी। रोना इट्स अ निगेटिव एनर्जी, आपके आपको उसको जल्दी ठीक करना है, तो आप उसको प्यार से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना है। फिर जैसे पोस्ट डिलीवरी डाइट, ये तो रूटीन हमारे प्री डिलीवरी डाइट जैसे ही होना चाहिए, एक्सेप्ट जिससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा है ना, मेथी के लड्डू, डिंक का लड्डू, और फिर जैसे शतावरी है या फिर जैसे हरीव है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे आपका ब्रेस्ट फीडिंग और अच्छा होगा। आपको बता दू, ब्रेस्ट फीडिंग है वो आप क्या खाते हो उससे नहीं तैयार होता है, इट्स अ हार्मोनल प्रोसीजर, जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, आप जैसे ही सोचेंगे तो भी आपका ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम जो खा रहे हैं उससे ब्रेस्ट मिल्क तैयार होगा, और फिर हम लोग इतना घी वाला और ये सब खाना खाते रहते हैं, पहले ही 9 मंथ्स तक वेट पुट ऑन किया है, उसके बाद और पुट ऑन होता है जो फिर कभी कम होता नहीं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रूटीन डाइट है वही लेना है, उसके साथ ये हमें ध्यान देना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लिक्विड इंटेक ज्यादा होना चाहिए। अभी आपको जैसे 7-8 times बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करना है एवरी 2-3 hours, सो इट कम्स टू 7-8 times, नॉट मोर देन दैट। तो एवरी टाइम उसके पहले 1 glass ऑफ लिक्विड लेना है, जैसे 10-12 glass आपके लिक्विड इंटेक होना चाहिए। कुछ भी लो, आप मिल्क लो, खीर लो, आप बटर मिल्क लो, या आप नारियल पानी लो, कुछ भी लो, या सादा पानी लो, तो जिससे 1/2 hour पहले आप लेंगे तो मिल्क फ्लो इजीली हो जाता है, एक्सप्रेशन इजी हो जाता है, तो आपको खाने से भी ज्यादा लिक्विड इंटेक पे ध्यान देना है, तो ये आप फॉलो करना। और फिर पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम सभी को बोलते हैं भाइयों को कि उनको जो है फर्स्ट बर्थडे है वो प्री डिलीवरी ड्रेस में मनाना है, ये कंपल्शन है, नया ड्रेस या नई साड़ी नहीं लानी है, जो पहले का जो था वही डालना है, मतलब जो 9 मंथ्स आपको लगे वेट पुट ऑन करने के लिए, उसके बाद 9 मंथ्स में आपको वेट रिड्यूस भी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप इमीजिएट नेक्स्ट जैसे एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। पोस्ट सिजेरियन है तो 1 month के बाद आप रूटीन जो कार्डियो है ना, वॉकिंग है, ट्रेडमिल है, ये कर सकते हैं, और बाकी जो हेवी एक्सरसाइज है वो आपको 6 months के बाद करने, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स थोड़ा वीक रहेगा तो हर्निएशन का चांसेस रहता है, तो आप मसल वगैरह एक्सरसाइज आपको बाद में करने हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज करने हैं, क्योंकि हम देखते हैं 35-40 में लेडीज आते हैं कि तभी यूट्रस नीचे आ रहा है, रहा है, पेशाब का थैली नीचे आ रहा है, यूरिन लीक हो रहा है, ये सभी जो हमारा डिलीवरी के टाइम मसल्स का टोन लूज हो जाता है उसका जो है परकशंस बाद में हमें दिखता है, तभी हम कुछ नहीं कर सकते, तभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं रहता है, सीधा सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है। इसीलिए आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज भी सिखाते हैं, तो आप सभी आपके हिसाब से एक हाफ एन आवर वन आवर टू थ्री डेज के लिए आके ये एक्सरसाइज भी सीखना और फिर घर पे इनिशियल पीरियड के लिए करते रहना, क्योंकि नहीं तो बाद में जाके ये सभी प्रॉब्लम शायद हम फेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट डिलीवरी केयर है ना, जो बेबी के लिए और मदर के लिए। एक बात आपके साथ शेयर करना था, जैसे मैं अभी पानी पी रही थी तो हमने जैसे देखा खाना खाते टाइम है ना, शिरा का हमने एग्जांपल लिया, तो वैसे ही हमको हर रोज खाना भी खाना है, पानी भी पीना ही है। तो परमात्मा ने तो ऐसे नहीं कहा ना कि प्रसाद बनाओगे तभी मुझे याद करके खा लो और पी लो, है ना, तीर्थ। और इसीलिए आप देखेंगे इंडियन कल्चर में जो भी हमारे विधि रहते हैं तो क्या रहता है, पानी के ऊपर विधि करते हैं ना, वो बोलते स्वाहा, फिर वो बोलेगा फिर स्वाहा, तो और फिर वो तीर्थ के रूप में सभी को दिया जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो वाटर है, इट्स अ लिक्विड ना, तरल तत्व है, उससे वाइब्रेशंस जल्दी फ्लो हो जाते हैं, और इसीलिए हमारे निगेटिव भी जो है यूरिन से हमारे सभी निगेटिव वाइब्रेशंस बाहर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है कि एवरी टाइम जब भी हम पानी पी रहे खाना खा रहे हमें उसके याद में विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस खाने, एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि अभी मैं शांति पी रही हूँ तो ऑब्वियसली अशांति बाहर चली जाएगी, अभी मैं खुशी पी रही हूँ तो ऑब्वियसली दुख बाहर चला जाएगा, अभी मैं सुख ले रही हूँ तो ऑब्वियसली दुख बाहर चला जाएगा। तो एटलीस्ट हम इतना तो डेफिनेटली कर सकते हैं ना। सपोज हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइम जस्ट टेक वन मिनट, इट डजंट टेक मोर देन दैट, जस्ट एक मिनट के लिए, कुछ भी हुआ है ना कुछ तो होता ही रहेगा है ना, नहीं तो फिर लाइफ में तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस। तो वो जो कुछ हुआ है, मैं पानी पी रही हूँ वन आवर टू आवर्स के बाद, तो अभी मैं बहुत शांति पी रही हूँ, अशांति बाहर चली जा रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले रही हो, बेबी को भी कम्युनिकेट करो, ठीक है थोड़ा सा हो गया लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी हम बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले रहे हैं, बहुत खुशी ले रहे हैं और हम वापस बहुत खुश हो रहे हैं। खुद को ही करना है, हमारे लिए कोई नहीं करेगा, एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, खुद को ही करना है, और दैट इज व्हाट इज सेल्फ एम्पावरमेंट, जो हमारे माइंड का एम्पावरमेंट करना है। तो ये बहुत जरूरी है, खाना खाते टाइम भी खाना, सपोज हम लोग खुद का खाना नहीं बना सकेंगे लेकिन एटलीस्ट खाना खाते टाइम तो हम डेफिनेटली, बनाने वाले ने कुछ भी वाइब्रेशंस उसमें डाले हैं लेकिन हम लोग तो डाल सकते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस की, मैं तो खुशी खा रहा हूँ, मैं तो उसको है ना आनंद से खा रहा हूँ। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे जब भी हम, नहीं तो क्या होता है, इतना हमारा हेक्टिक शेड्यूल रहता है लेकिन स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग मेंटेनिंग। आप सभी को अभी पता नहीं या आपको पता भी होगा कि अभी मैं मेजर इलनेस से रिकवर हो रही हूँ, फिर भी टूडे आई एम स्टैंडिंग हियर। तो जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं अभी मैं शांति ले रही हूँ, अभी मैं खुशी ले रही हूँ, तो जो भी हुआ है वो उसमें डाइल्यूट हो जाता है, चला जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली वी रन ऑन एनर्जी, इट्स अ कार, तो कार पेट्रोल पे मूव हो रही है, तो पेट्रोल में यदि कुछ वो कचरा रहेगा तो क्या होगा, कार स्मूथली रन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वैसे ही ये सभी निगेटिव वाइब्रेशंस कचरे जैसा है, उस सभी को हमें ही निकालना है, कौन निकालेगा, हमारा कार तो हमको ही करना पड़ेगा ना साहब। तो ये बहुत जरूरी है। कॉमन क्वेरीज, मोबाइल फोन, जैसे हमने देखा कि मोबाइल फोन हमें यूज नहीं करना है, साइंटिफिकली इट्स ऑलरेडी प्रूवन इट कॉजेज कैंसर, और इसीलिए ब्रेन कैंसर के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, भाइयों के लिए भी और सभी के लिए। जैसे हम अब देखेंगे काफी सारे इनफर्टाइल है ना, बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि जनरली भाइयों का मोबाइल पॉकेट्स में रहता है, जिससे स्पर्म काउंट और उसका मोटिलिटी है ना, जो शुक्र जंतु है, काफी अफेक्ट हो रहा है। इतने सारे काफी टाइम्स लैपटॉप से निगेटिव वाइब्रेशंस, वेव्स नहीं बाहर आ रहे लेकिन फिर वो आपका जो दोनों लेग्स कांटेक्ट हो रहा है और उससे बहुत हीट जनरेट होता है। तो ये सभी रीजन से हम देख रहे, बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि ये सभी से इनफर्टिलिटी पेशेंट्स काफी बढ़ रहे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और सेकेंड, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को मोबाइल यूज नहीं करना है, यूज भी करना है तो अभी आप देखेंगे कि एक तो हम किस में रखते हैं, पर्स में, और फिर वो पर्स हमारे कहाँ रहती है, गोदी के ऊपर, तो डायरेक्टली बेबी को जाता है। तो अभी के अभी आप निकाल के मोबाइल रहेगा तो बाजू में रख दो, है ना, मोबाइल बिल्कुल आपके पास नहीं रखना है, जो आपके साथ रहेगा उनके पास मोबाइल देना है। घर पे तो मोबाइल प्रिफरेबली यूज नहीं करना, जहां लैंडलाइन यूज कर सकते हैं वहां लैंडलाइन यूज करना, और जहां पे रेंज बहुत कम रहता है वहां बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वहां मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होंगे एंड दैट इज डैमेजिंग। फिर माइक्रोवेव, जब भी माइक्रोवेव यूज में है तभी उसके सामने खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि वेव्स डैमेज करेंगे। इक्लिप्स एंड प्रेगनेंसी, है ना, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या हम बाहर निकले, क्या हम सब्जी काटे, तो इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कुछ डैमेजिंग नहीं रहता है। ओनली रेस से जो आंख के लिए, आईज के लिए डैमेजिंग है, उसके लिए स्पेशल ग्लासेस जैसे बाकी लोगों को यूज करने हैं वैसे ही आपको यूज करने होते, बाकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। पपाया, काफी क्वेरीज रहता है, पपाया में जो कच्चा पपाया रहता है उसमें पैपिन रहता है एंड दैट इज डैमेजिंग। वो भी आप बहुत ऐसे कच्चा पपाया खाएंगे तो मे बी वो पैपिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो एबॉर्ट इफिशियंट रहता है, लेकिन हम लोग इतना कच्चा पपाया तो खाते ही नहीं है, है ना, पक्का ही पपाया खाते हैं एंड दैट इज नॉट डैमेजिंग। इवन फर्स्ट 3 मंथ्स में भी आप खाएंगे तो भी उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। फिर कुछ डोंट्स इन प्रेगनेंसी, है ना, जैसे सबसे पहले हमने कहा एंगर, इसको छोड़ना है ना, और फिर बॉडी के लिए जैसे 2-व्हीलर्स 3-व्हीलर्स जो क्लाइंबिंग एंडिंग है ये सब, और खास करके अभी रेनी सीजन है थोड़ा सा रहता है टेस्ट कि बाहर का पानी पूरे खाए कभी तो, लेकिन प्लीज प्लीज अवॉइड करना पानी भी, अभी रेनी सीजन है आप बिल्कुल ही बॉइल करके ही लेना, कोई भी कितना भी एक्वागार्ड कुछ भी हो वायरसेस और इसके लिए देयर इज नथिंग, नो सब्स्टिट्यूट, पानी बॉइल करके ही लेना है। टाइफॉइड कॉलरा ये सभी केसेस इट इज डैमेजिंग, उसके साथ जो मेडिसिन जाएंगे दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग, तो इसीलिए आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि रेनी सीजन में पानी बॉइल करके ही लेना है। फिर जैसे हाई हील्स है ये सभी आपको डोंट्स इन प्रेगनेंसी है। तो ये था हमारा बॉडी एम्पावरमेंट का, क्या हम सभी और हाफ एन आवर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो माइंड एम्पावरमेंट के लिए लेंगे क्योंकि थोड़ा शिफ्टिंग में हमारा टाइम गया, बट देन अल्टीमेटली जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मे बी ऊपर थोड़ा बारिश का भी और यहाँ पे थोड़ा ऐसी कंफर्टेबल फीलिंग रहता है। तो अभी तक हमने देखा कि